नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण होना है। एसकेएम नेता प्रेम सिंह तमांग कल सिक्किम के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण बुधवार को होगा। उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षा में पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए नया कानून लाएगी। भारत आज शाम न्यूयॉर्क में T20 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान से भिड़ेगा। टेनिस में आज फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अलकराज का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अब समाचार विस्तार से। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी मंत्रिपरिषद को भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। राष्ट्रपति ने श्री मोदी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया था। शुक्रवार को श्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा था। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़्ज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हैं। मालदीव के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री समारोह के लिए आज दिल्ली पहुंचे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और सेशल्स के उपराष्ट्रपति कल इस सिलसिले में नई दिल्ली पहुंचे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक पर भी फूल चढ़ाए। श्री मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सिक्किम में श्री प्रेम सिंह तमांग कल शाम 4 बजे अपनी मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह दूसरा मौका होगा जब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम प्रमुख श्री तमांग मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी गैंगटॉक नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले सभी सरकारी और निजी शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। यह निर्णय व्यापक सुरक्षा प्रबंध और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण लिया गया है। हाल ही में संपन्न सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती है। एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ के खाते में गई है। एसडीएफ प्रमुख और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होगा। इससे पहले यह समारोह सोमवार को आयोजित करने का फैसला किया गया था। राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि राजधानी भुवनेश्वर की जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह भाजपा विधायक दल के 78 सदस्यों की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा। मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ सांसद सुरेश पुजारी, मोहन चरण मांझी और केवी सिंह देव के नाम चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार परिचालन मामलों से निपटने के लिए कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भर्ती आयोगों के प्रमुखों की बैठक में कहा कि पेपर लीक या सांवर गैंग की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं है और ऐसे अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो नजीर बन सके। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल सरकारी या सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाएं सिर्फ शहरों में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भर्ती आयोगों को निर्देश दिया कि वे भर्ती के हर चरण में राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों तथा विशेष कार्य दल के संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। प्रश्न पत्र बनाने से लेकर भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग एजेंसियों की सेवा ली जानी चाहिए। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की कड़ी मेहनत, मेधा और प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उनके हितों की सुरक्षा के प्रति संकल्पित है। उन्होंने रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, समय पर पूरा करने और सुचिता बनाए रखने पर जोर दिया। केरल में मशीनी नौका से मछली पकड़ने पर आज रात से 52 दिन तक प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मछली पकड़ने वाली पारंपरिक नौकाओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन इस अवधि में बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों पर डीजल बंकर बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को आज आधी रात से तटवर्ती इलाकों को छोड़ने का आदेश दिया है। राज्य के तटवर्ती जिलों में पिछले महीने की 15 तारीख से मछली नियंत्रण कक्ष निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को निशुल्क राशन दिया जाएगा। केरल सरकार 1988 से ऐसे प्रतिबंध लगा रही है। इसका उद्देश्य समुद्र में मछली पकड़ने के प्रभाव को कम करना है। इसके अलावा यह समय मछलियों के प्रजनन का भी होता है और प्रतिबंध से समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। तेलंगाना सरकार ने मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती रामोजी राव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है। श्री रामोजी का कल निधन हो गया था। उन्हें आज सुबह हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में अंतिम विदाई दी जाएगी। रामाजी राव के सम्मान में आंध्र प्रदेश ने 9 और 10 जून के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में सभी सरकारी कार्यालय में राष्ट्रध्वज झुके रहेंगे और कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पैनल के अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष होंगे। यह समिति एक सप्ताह के भीतर सिफारिश देगी और अभ्यर्थियों के परिणाम की समीक्षा भी की जा सकती है। मेडिकल और डेंटल प्रवेश परीक्षा के परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। कई प्रत्याशियों ने कई मुद्दे उठाते हुए दोबारा परीक्षा लेने की मांग की थी। कई आवेदकों ने अदालत में भी मामला दर्ज किया है। नीट के लिए 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था और 97% उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के संदर्भ में 4 कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। इन बर्खास्त कर्मचारियों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कांस्टेबल, शिक्षा विभाग का एक शिक्षक और जम्मू कश्मीर सरकार के जनशक्ति विभाग का एक सहायक लाइनमैन शामिल है। इन कर्मचारियों की गतिविधियां कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के प्रतिकूल नोटिस में आ गई थी, क्योंकि इन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। इस बीच सरकार ने सरकारी सेवा में होने का फायदा उठाने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस है। इसका आयोजन रिकॉर्डों और अभिलेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के महत्व के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2004 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की थी। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस 2007 में मनाया गया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट में इस समय वेस्टइंडीज और युगंडा के बीच मैच जारी है। ये मैच वेस्टइंडीज के गुयाना में खेला जा रहा है। आज प्रतियोगिता के एक अन्य मैच में न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। आज एक अन्य मैच वेस्टइंडीज की एंटीगुआ में ओमान और स्कॉटलैंड के बीच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को और दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड को हरा दिया। फ्रेंच ओपन टेनिस के फाइनल में आज पेरिस में स्पेन के कार्लोस अलकराज का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जवरेव से होगा। 21 वर्षीय अलकराज का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा, जबकि जवरेव पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। अल्काराज 2022 में अमेरिकी ओपन और 2023 में विंबलडन जीत चुके हैं। प्रतियोगिता के महिला सिंगल का खिताब कल पोलैंड की इगा स्वातेक ने जीता। उन्होंने फाइनल में इटली की जस्मिन पाओलोनी को हराया। स्वातेक लगातार तीन बार फ्रेंच ओपन जीतने वाली तीसरी महिला है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।